चैप्टर 33 व का द्वितीय अंश। विवोक सौभाग्य गर्व के कारण प्रिय वस्तु के प्रति अनादर का भाव विवोक कहलाता है। विवोकस्त्वति गर्वेण वस्तु निष्ठे अप्यनादरः। साहित्य दर्पण तृतीय परिच्छेद पृष्ठ संख्या 185। उदाहरण, केवल इसी प्रसंग में विवोक हाव की कुछ झलक मिलती है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 52। विशिष्टाद्वैत वेदांत का वह सिद्धांत जो ईश्वर को चित्त और अचित प्रकृति या जड़ तत्व दोनों से युक्त या विशिष्ट मानता है। इस मत के अनुसार जीव तथा जगत की नित्य एवं स्वतंत्र सत्ता है, किंतु ये ईश्वर के अधीन है। ईश्वर सगुण और विशिष्ट है। उदाहरण, उपनिषद प्रतिपादित सो अहम अस्मि और तत्वमसि आदि अद्वैत वाक्य का पारमार्थिक में विश्वास रखते हुए भी गो गोचर जह लगी मन जाई तह लगी माया जाने हुभाई कहकर मायावाद को स्वीकार करते हुए भी कहीं कहीं विशिष्टाद्वैत मत का आभास उन्होंने किया है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 41। विशुद्ध काव्य दृष्टि गोचर जगत के रूपों और व्यापारों के प्रति रागात्मक संबंध की स्थापना करने वाली काव्य दृष्टि विशुद्ध काव्य दृष्टि होती है। उदाहरण, वह अबर काम्ब्रे को कभी वादग्रस्त होकर चेतना के कोने के बाहर की बात कहने जाता है, जब लोकवादी ह्यूमैनिटेरियन के रूप में हमारे सामने आता है, विशुद्ध काव्य दृष्टि का प्रमाण देता है, तब उसकी सच्चाई में संदेह करने की कोई जगह नहीं रह जाती। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 86। विशुद्ध स्मृति राग द्वेष मुक्त शुद्ध भाव भूमि से संबद्ध स्मृति। उदाहरण, अतः उन्हीं वस्तुओं या व्यापारों का वास्तविक स्मरण रसात्मक होगा जिनकी प्रत्यक्ष अनुभूति रस कोटि में आ सकती है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 277। विशेष कालबद्ध मनुष्यत्व विशेष देश काल में प्रचलित सभ्यता के औपचारिक विधि निषेधों के बंधन में बंधा हुआ मनुष्यत्व, मनुष्य की वह प्रवृत्ति और प्रकृति जो युग विशेष में प्रचलित वैज्ञानिक सभ्यता के बाह्य उपकरणों को महत्व देने के कारण संकुचित हो गई है। उदाहरण, प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र से हमारा उनका कालिदास आदि भेदभाव मिट जाता है। हम सामान्य परिस्थिति के साक्षात्कार द्वारा चीरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्यत्व का अनुभव करते हैं, किसी विशेष कालबद्ध मनुष्यत्व का नहीं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 151। विशेषोक्ति जहाँ कारण के विद्यमान रहने पर भी कार्य का न होना वर्णित हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। सती हेतु फलाभावे विशेषोक्ति तथा द्विधा। साहित्य दर्पण दशम परिच्छेद। उदाहरण, घट मह निकट विकट हो मोरु मिलही न मिले परातस फेरु। विशेषोक्ति जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 115। विशेष धर्म परिवार और समाज में स्थिति विशेष माता पिता स्वामी सेवक गुरु शिष्य राजा प्रजा आदि के अनुसार जो कर्तव्य और मर्यादाएं निर्धारित होती हैं वे विशेष धर्म के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण, संसार के और देशों में जो मत प्रवर्तित हुए उनमें साधारण धर्म का ही पूर्ण समावेश हो सका। विशेष धर्मों की बहुत कम व्यवस्था है, पर सरस्वती और दृश्यद्वति के तटों पर पल्लवित आर्य सभ्यता के अंतर्गत जिस धर्म का प्रकाश हुआ, विशेष धर्मों की विस्तृत व्यवस्था उसका लक्षण हुआ और वह वर्णाश्रम धर्म कहलाया। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 24। विशेष उन्मुख विशिष्ट व्यक्ति के प्रति उन्मुख एक निष्ठ। उदाहरण, प्रेम भी लोभी है पर विशेष उन्मुख। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 32। विश्व काव्य यह विराट विश्व अपने रमणीय रूपात्मक प्रसार में काव्य जैसे अलौकिक सौंदर्य से युक्त है, इसलिए इसे विधाता द्वारा रचित विश्व काव्य कहते हैं। उदाहरण, इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 8। विश्व व्यापार ग्राहिणी सहृदयता विश्व में घटित होने वाले सभी प्रकार के मर्मस्पर्शी एवं प्रभावोत्पादक कार्य व्यापारों को भाव का विषय बनाने वाली सहृदयता। उदाहरण, अद्भुत रस के इस आलंबन द्वारा गोस्वामी जी की वह स्वाभाविक विश्व व्यापार ग्राहिणी सहृदयता लक्षित होती है जो हिंदी के और किसी कवि में नहीं। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 66। विषय प्रेम जहां नायक और नायिका दोनों समस्तरीय प्रेम न हो। उदाहरण, रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम में आरंभ में विषमता है और गोपी कृष्ण के प्रेम में अंत में, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 54। विषाद, प्रारब्ध कार्य के अनिर्वाह, इष्ट की अनाप्ति, विपत्ति, अपराध परिज्ञान आदि कारणों से उत्पन्न सत्व संशय पौरुष हानि को विषाद कहते हैं। यह 33 संचारी भावों में से एक है। यह प्रायः शोक के संचारी रूप में आता है। उदाहरण, यह विषाद जो शोक का संचारी है वह यह आर्तनाद शोक सूचक है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 59। उदाहरण, जिस वेग की प्रेरणा से लोग एक वार्गी कर्तव्य शून्य होकर हार मानकर बैठ जाते हैं वह विषाद है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 209। उदाहरण तृतीय, ये पद्मावती के वचन हैं जिनमें रति भाव व्यंजक विषाद है और औत्सुक्य की व्यंजना है, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 58। विषादन, जहां इच्छित के विरुद्ध अर्थ की प्राप्ति का वर्णन हो वहां विषादन अलंकार होता है। उदाहरण, गहें बिनु मकु रैनी बिहाई, ससी वाहन तह रहे ओनाई, विषादन अलंकार, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 116। विस्कंभक, पूर्व घटित या भविष्य में घटित होने वाली कथा की मध्यम या नीच पात्रों द्वारा दी जाने वाली सूचना विस्कंभक कहलाती है। इसके दो भेद हैं, शुद्ध और संकर। जब कथा की सूचना मध्यम पात्र देते हैं तब उसे शुद्ध विस्कंभक कहते हैं और जब नीच पात्र देते हैं तो उसे संकर कहते हैं। उदाहरण, इस प्रकार आजकल विस्कंभक और प्रवेशक का काम देने वाले दृश्य तो रखे जाते हैं पर ये नाम हटा दिए गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 549। वृत्त विधान, छंद रचना, काव्य में वर्णों और मात्राओं के प्रयोग का नियमन करने वाला शास्त्र छंद शास्त्र है। छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार वर्णों और मात्राओं का विधान वृत्त विधान कहलाता है। उदाहरण, श्रुति कटु मान कर कुछ वर्णों का त्याग वृत्त विधान लय अंत्यानुप्रास आदि नाच सौंदर्य साधन के लिए ही है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 46। वृत्ति चक्र, मनोवृत्तियों का ऐसा संश्लिष्ट विधान जिसके भीतर वस्तु बोध से लेकर मनोविकार के जगने, गतिशील होने और शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से लक्षित होने की पूरी प्रक्रिया समाहित होती है, वृत्ति चक्र कहलाता है। उदाहरण, पर जो लोग रस पद्धति की अच्छी तरह समझते हैं और आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा निरूपित भाव के स्वरूप से परिचित हैं उनके निकट इस कथन का कोई अर्थ नहीं। वह एक वृत्ति चक्र सिस्टम है जिसके अंतर्गत प्रत्यय, अनुभूति, इच्छा, गति या प्रवृत्ति, शरीर धर्म सबका योग रहता है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 88। वृत्ति विधान, नाटक आदि प्रबंध में वर्ण नायक और नायिका के विविध व्यापार वृत्ति कहे जाते हैं। वृत्ति अभिनय मात्र की जननी है। वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं। कैशिकी, इसका संबंध श्रृंगार रस की व्यंजना से है। सात्वती, इसका संबंध वीर रस की व्यंजना से है। आरभटी, इसका संबंध रौद्र और विभत्स रसों की व्यंजना से है। और भारती, इसका संबंध सभी रसों से है। भरत मुनि के अनुसार 4 वृत्तियां 4 वेदों से ली गई हैं। ऋग्वेद से भारती, यजुर्वेद से सात्वती, सामवेद से कौशिकी और अथर्ववेद से आरभटी वृत्ति का विकास हुआ है। शास्त्रों में भारती वृत्ति का विवेचन विस्तार से हुआ है। इसे वाक् प्रधाना, पुरुष प्रयोज्या, स्त्री वर्जिता, संस्कृत वाक्य युक्ता कहा जाता है। उदाहरण, सूर में चलती भाषा की कोमलता है, वृत्ति विधान और अनुप्रास की ओर झुकाव कम है। सूरदास पृष्ठ संख्या 111। वृत्त्यानुप्रास, वृत्ति धन अनु धन प्र धन आस। वृत्ति से तात्पर्य रसानुकूल वर्ण विन्यास से है। रस के अनुकूल प्रकृष्ट वर्ण विन्यास को वृत्त्यानुप्रास कहते हैं, जहां अनेक व्यंजनों की एक प्रकार की समानता अथवा अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति या एक वर्ण की एक बार या अनेक बार आवृत्ति होती है वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। इस अलंकार में मूल बात यह है कि व्यंजनों की आवृत्ति रस के अनुकूल होनी चाहिए। उदाहरण, शब्दालंकार में जायसी ने वृत्त्यानुप्रास, यमक, श्लेष और वर्णन किया पर संयम के साथ व्यंग वंजित। व्यंजना शक्ति से प्राप्त अर्थ वाच्य और लक्ष्य अर्थात अभिधा और लक्षणा से प्राप्त अर्थ से भिन्न प्रतीयमान अर्थ अभिधा शक्ति से प्राप्त सीधा या मुख्यार्थ होता है। लक्ष्यार्थ अभिधार्थ की बाधा होने पर रूढ़ी का प्रयोजन सहारे लक्षणा शक्ति से ग्रहण किया जाता है, किंतु व्यंग्यार्थ अभिधा मूलक और लक्षणा मूलक दोनों ही हो सकता है। व्यंग्यार्थ अभिधा और लक्षणा दोनों से प्राप्त अर्थ के बाद किंचित ध्यान देने पर व्यंजित होता है। व्यंग को प्रतीयमान भी कहते हैं। आचार्यों ने वस्तु अलंकार और रस तीनों को व्यंग माना है। वस्तु से तात्पर्य अनलंकृत अर्थ है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की व्यंजना वस्तु व्यंजना कही जाती है। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि अरे बटोही, यह तो पहाड़ी बस्ती है, यहाँ बिस्तर आदि कहाँ मिलेंगे, यदि ठहरना चाहो तो उन्नत पयोधर देख लो और ठहर जाओ। इस कथन से व्यंग यह निकलता है कि यदि पर्वती सुंदरी का सुखाभोग चाहते हो तो यहीं रुक जाओ, वहाँ वस्तु व्यंग है। अलंकार व्यंग में व्यंग्यार्थ में अलंकार की स्थिति होती है, जैसे राधा के इस कथन में कि सखी तुम्हारे प्रिय अच्छे हैं तो तुमसे कुछ दिन अलग रह लेते हैं, परंतु मेरे कृष्ण तो एक पल का भी वियोग सहने नहीं कर पाते, व्यतिरेक अलंकार व्यंग है। आचार्य शुक्ल को वस्तु और अलंकार को व्यंग मानने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु वे रस भाव आदि को व्यंग नहीं मानना चाहते। आचार्य शुक्ल रस प्रक्रिया में विभाव पक्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। विभाव के संबंध में उनका कथन है कि विभाव व्यंग नहीं होता। विभाव रूप में वे वस्तुएं वर्णित होती हैं जो भावों को उद्दीपन या आलंबन प्रदान करती हैं। उदाहरण, यदि यह कहिए कि यहाँ जहाँ कोरी चमत्कार वृत्ति से प्रेरित होकर अलंकार विधान किया जाता है, अलंकार द्वारा उक्त दृश्य रूप वस्तु व्यंग है, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि विभाव व्यंग नहीं हुआ करता। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 128। व्यंग गर्भित अप्रस्तुत अर्थ की व्यंजना से युक्त। उदाहरण, यह कहा जा चुका है कि जायसी का कथानक व्यंग गर्भित है। जायसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 104। व्यंगार्थ वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से परे व्यंजना व्यापार से गृहित अर्थ व्यंगार्थ होता है। उदाहरण, सूरदास प्रभु वै अति खोटे कारो कृत ही न माने, इन दोनों वाक्यों में वाच्यार्थ के अतिरिक्त संलक्ष्य असंलक्ष्य किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ भी है या नहीं। सूरदास पृष्ठ संख्या 117। व्यंजना वह शक्ति जो अभिधा लक्षणा या तात्पर्य वृत्ति द्वारा उपलब्ध अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराती है। व्यंजना का शाब्दिक अर्थ है प्रकट करना या प्रकाशन। प्रकाशन उसी वस्तु का हो सकता है जिसकी सत्ता पहले से हो। व्यंजना तीन प्रकार की होती है, वस्तु व्यंजना, भाव व्यंजना और अलंकार व्यंजना। वस्तु व्यंजना और अलंकार व्यंजना तो ठीक है, क्योंकि दोनों में किसी ऐसे तथ्य या वृत्त का बोध कराया जाता है जिसकी सत्ता विद्यमान रहती है, किंतु भाव या रस की व्यंजना कहना ठीक नहीं है। भाव या रस कोई तथ्य या वृत्त नहीं है, यह अनुभूति है। वस्तु व्यंजना में हम एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर जाते हैं, भाव व्यंजना में ऐसा नहीं होता। आचार्य शुक्ल इसलिए भाव व्यंजना या रस व्यंजना को वस्तु व्यंजना से भिन्न कोटि की वृत्ति मानते हैं। उदाहरण, व्यंजना के संबंध में कुछ विचार करने की आवश्यकता है। व्यंजना दो प्रकार की मानी जाती है, वस्तु व्यंजना एवं भाव व्यंजना। किसी तथ्य या वृत्ति की व्यंजना वस्तु व्यंजना कहलाती है और किसी भाव की व्यंजना भाव व्यंजना कहलाती है। भाव व्यंजना ही सब रस के सब अवयवों के निहित होती है, तब रस व्यंजना कहलाती है। यदि थोड़ा ध्यान देकर विचार किया जाए तो दोनों भिन्न प्रकार की वृत्तियां ठहरती हैं। वस्तु व्यंजना किसी तथ्य या वृत्त का बोध कराती है, पर भाव व्यंजना जिस रूप में मानी गई है उस रूप में किसी भाव का संचार करती है, उसकी अनुभूति उत्पन्न करती है। बोध या ज्ञान कराना एक बात है और कोई भाव जगाना दूसरी बात है। दोनों भिन्न कोटि की क्रियाएं हैं, पर साहित्य के ग्रंथों में दोनों में केवल इतना ही भेद स्वीकार किया गया है कि एक में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ पर आने का पूर्वापर क्रम श्रोता या पाठक को लक्षित होता है तथा दूसरी में यह क्रम होने पर भी लक्षित नहीं होता। पर बात इतनी ही नहीं जान पड़ती, रति क्रोध आदि भावों का अनुभव करना एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर जाना नहीं है। अतः किसी भाव की अनुभूति को व्यंग्यार्थ कहना बहुत उपयुक्त नहीं जान पड़ता। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 163। व्यक्ता व्यक्तवाद। यह दृश्य जगत अव्यक्त की ही अभिव्यक्ति है, यह सिद्धांत व्यक्ता व्यक्तवाद है। उदाहरण, उपनिषदों में ब्रह्मा के लिए जो व्यक्ता व्यक्त शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें सारूप्य की यह भावना स्पष्ट है। सूरदास संख्या 21। व्यक्ति विधान प्रबंध। जिन प्रबंध काव्यों में नायक के जीवन की समस्त घटनाओं का विवरण होता है, अर्थात कवि की दृष्टि नायक या व्यक्ति पर केंद्रित रहती है, उन्हें व्यक्ति प्रधान प्रबंध काव्य कहा जाता है, जैसे रघुवंश, बुद्धचरित इत्यादि। उदाहरण, प्रथम प्रकार के प्रबंधों जिनमें दृष्टि व्यक्ति पर केंद्रित होती है को हम व्यक्ति प्रधान कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत रघुवंश, बुद्धचरित, विक्रमांक देव चरित इत्यादि हैं, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 73। व्यक्तिवाद। यह मूलतः राजनीति शास्त्र का शब्द है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों, स्वार्थों और हितों को समझता है, इसीलिए समष्टिगत सामाजिक शक्तियों का व्यक्ति पर नियंत्रण रखना नैतिक नहीं है। व्यक्तिवाद का समानांतर विरोधी सिद्धांत समाजवाद का है। साहित्य में जो रचनाकार अपनी निजी भावनाओं को अधिक महत्व देता है और उसे व्यक्तिवादी कहते हैं। काव्य के अनेक आंदोलन व्यक्तिवादी जीवन दृष्टि के परिचायक हैं। स्वच्छंदतावाद, अभिव्यंजनावाद, प्रतीकवाद, बिंबवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद आदि आंदोलनों के मूल में व्यक्तिवाद चेतना कार्य करती है। उदाहरण, अंत में इशारे पर आंख मूंद कर दौड़ने वाले बड़े बड़े पंडितों ने पुनरुत्थान की कालधारा को मत कर व्यक्तिवाद रूपी नया रत्न निकाला है। फिर क्या था, शिक्षित समाज में व्यक्तिगत विशेषताएं देखने दिखाने की चाह बढ़ने लगी। रस्म मानसा पृष्ठ संख्या 321। उदाहरण, अब तक जो कुछ कहा गया है उससे गोस्वामी जी की व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म के विरोधी और लोकवाद सोशलिज्म के समर्थक में लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 30। व्यक्ति वैचित्र्यवाद। वह सिद्धांत जो नाटकों, दृश्य काव्यों में शील वैचित्र या अंत प्रकृति वैचित्र को कला की उत्कृष्टता का आधार मानते हैं। निरपेक्ष दृष्टि संबंध नाटककार ही सर्वथा नूतन एवं अद्वितीय प्रकृति वाले पात्रों की सृष्टि कर सकते हैं, जो किसी वर्ग, सात्विक, तामस या सामान्य की प्रकृति के भीतर समाहित नहीं हो सकते। थियोडोर वैट्स डंटन ने ऐसे अद्वितीय प्रकृति वाले पात्रों की दृष्टि से नाट्य कला का चरम उत्कर्ष माना है। उदाहरण, हमारे यहाँ के आचार्यों ने श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य दोनों में रस की प्रधानता रखी है। इसी से दृश्य काव्य में भी उनका लक्ष्य तादात्म्य और साधारणीकरण की ओर रहता है, पर यूरोप के दृश्य काव्यों में शील वैचित्र व्यक्ति वैचित्रवाद की ओर ही प्रधान लक्ष्य रहता है, जिसके साक्षात्कार से दर्शक को आश्चर्य या कुतूहल मात्र की अनुभूति होती है। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 233। व्यतिरेक। व्यतिरेक का अर्थ है विशेष अतिरेक। जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का विशेष उत्कर्ष दिखाया जाता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण, सियमुख सरद कमल जिमी किमी कही जाए, निस मलीन वह निस दिन यह बिगसाय, व्यतिरेक अलंकार। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 98। देखिए इस व्यतिरेक की सहायता से संतों का स्वभाव किस सफाई के साथ औरों से अलग करके दिखाया गया है। उदाहरण, संत हृदय नवनीत समाना, कहां कविन पै कहीं न जाना, निज परताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। वो स्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 102। व्यतिरेक के दो उदाहरण और हैं। का सरिवर तेहि देउ मयूंक, चाद कलंकी वह नील कलंक, सुआ सो नाक कठोर पमारी, वह कोमल तिलु पोहुप समारी, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 109। व्यवहार पक्ष। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। कांट के अनुसार व्यवहारिक बुद्धि कर्म संकल्प रूपिणी है। कर्म संकल्प वृत्ति न तो बुद्धि से नियंत्रित है, न बाह्य जगत के नियमों से। इस पर केवल नित्य और सर्वगत धर्म नियमों कैंटेगरिकल इंपेरिट्स का ही नियंत्रण होता है। ये नियम व्यवसायिकता या व्यावहारिक बुद्धि के स्वप्रवर्तित नियम हैं। कर्म संकल्प वृत्ति या व्यवसायित्मिका बुद्धि की यह स्वायत्तता हमें नाम रूपात्मक जगत से परे चिन्मय जगत में ले जाती है, जहां हमें नित्य आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व का बोध होता है। उदाहरण, कांट ने मनुष्य के ज्ञान की विस्तृत परीक्षा करके यह प्रतिपादित किया कि इंद्रियों की सहायता से मन को जिन रूपों का बोध होता है वे उसी के रूप हैं, किसी बाह्य वस्तु के नहीं। परमार्थ पक्ष में ईश्वर जगत और आत्मा को पक्ष विपक्ष दोनों के प्रमाणों के खंडन द्वारा असिद्ध ठहराकर व्यवहार पक्ष में उन्होंने ईश्वर अमर आत्मा और अनंत जीवन सबका प्रतिपादन किया है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 79। व्याघात, जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा एक उपाय से किसी बात के सिद्ध कर दिए जाने पर उसी उपाय से दूसरे व्यक्ति द्वारा उसे असिद्ध कर दिया जाए, वहाँ व्याघात अलंकार होता है। या जहाँ एक क्रिया से दो विरोधी कार्यों का होना अथवा दो परस्पर विरोधी क्रियाओं से एक कार्य का होना दिखाया जाता है, वहाँ व्याघात अलंकार होता है। वस्तुतः व्याघात का शाब्दिक अर्थ है विशेष आघात, किसी निष्पादित वस्तु के विघात का निबंधन ही व्याघात है। उदाहरण, संतों और असंतों के बीच के भेद को थोड़ा कहते कहते व्याघात द्वारा कितना बड़ा कह डाला, जरा यह भी देखिए। वंदौ संत असज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कुछ बरना, मिलत एक दारुण दुख देही, भिक्षुरत एक प्राण हरि लेही। इस इतने बड़े भेद को थोड़ा कहने वाले का हृदय कितना बड़ा होगा। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 102। व्याज निंदा, जहाँ स्तुति के बहाने निंदा की जाए, एक प्रकार का अलंकार है। संस्कृत के आचार्यों ने व्याज सुदी अलंकार की यह चर्चा की है। वह स्तुति से निंदा व्यक्त करने पर उसे अवास्तविक या असत्य स्तुति मानकर उसका समावेश व्याज स्तुति के भीतर ही कर लेते हैं। उदाहरण, रावण और अंगद के संवाद में दोनों की व्याज निंदा बहुत ही अच्छी है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 96। व्याधि, रोग और वियोग से उत्पन्न मन का संताप ही व्याधि है। इसी प्रकार मरण व्याधि, अपस्मार भी तभी संचारी होंगे जब किसी भाव के कारण होंगे, अन्यथा नहीं। रसमय मानस पृष्ठ संख्या 232। व्यापार शोधन, कार्य व्यापार का चयन, किसी दृश्य या स्थिति को मूर्त करने अनेक कार्य व्यापारों में से सर्वाधिक उचित कार्य व्यापार का चयन व्यापार शोधन है। उदाहरण, कवि लोग अर्थ और वर्ण विन्यास के विचार से जिस प्रकार शब्द शोधन करते हैं, उसी प्रकार अधिक मर्मस्मर्शी और प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करने के लिए व्यापार शोधन भी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 70। व्यापार समष्टि, अनेक व्यापारों के संयोग से संगठित प्रसंग। उदाहरण, जहाँ वस्तु गुण या क्रिया के पृथक पृथक साम्य पर ही कवि की दृष्टि रहती है, वहाँ वह उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि का सहारा लेता है। और जहाँ व्यापार समष्टि या पूर्ण प्रसंग का साम्य अपेक्षित होता है, वहाँ दृष्टांत अर्थांतरान्यास और अन्योक्ति का। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 349। व्यास विधान, काव्य वस्तु को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करना ही व्यास विधान है। उदाहरण, अतः उनका अलंकारों का संयत प्रयोग वही होना चाहिए जहाँ विचार या भावना के पूर्ण प्रसार या भाव की यथेष्ट व्यंजना के लिए व्यास विधान अपेक्षित हो। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 153। व्याहत, निवारित या निषिद्ध। उदाहरण, पर सारा रस सारी रमणीयता इसी व्याहत और बुद्धि को अग्राह्य वाच्यार्थ में है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 167।